प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नश्च प्रायेश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिके। श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 15 श्लोक संख्या 28। षड्वर्ग संयमेकांत सर्वाः नियमचोदनाः तदन्ताः यदि योगान् अवहेयुः श्रमावहाः। षड्वर्गसंयैकान्ताः सर्वनियमचोदनाः तदन्ता यदि नो योगा योगान् आवहेयुः श्रमावहाः षड्वर्गसंयैकान्ताः सर्वनियमचोदनाः तदन्ता यदि नो योगान् आवयेयुः शमावः।
कायदेनो योगान आवहेयो समावह सर्वान्यमचोदना
षड वर्ग छह तत्व पांच कर्मेंद्रियां तथा मन संयम एकांता इंद्रिय दमन का चरम लक्ष्य सर्वाह ऐसे सारे कार्यकलाप नियम चोदना इंद्रियों तथा मन को वश में करने के लिए अंत विधान वश में करने के लिए अन्य विधान तथा अंताह ऐसे कार्यकलापों का चरम लक्ष्य यदि नौ नहीं योगाद ब्रह्म के साथ जुड़ने की कड़ी आवहेयुहु ले जाती है श्रम आवहा समय तथा श्रम का अपव्यय अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनुष्ठान विधि विधान तपस्या तथा योगाभ्यास ये सभी इंद्रियों तथा मन को वश में करने के लिए हैं, किंतु इंद्रियां तथा मन को वश में कर लेने के बाद भी यदि वह भगवान का ध्यान नहीं करता तो सारे कार्यकलाप श्रम के अपव्यय मात्र है। तात्पर्य कोई यह तर्क कर सकता है कि योगाभ्यास से तथा वैदिक नियमों के अनुसार कर्मकांड करने से गुरु की एकांत भक्ति किए बिना ही मनुष्य को जीवन के चरम लक्ष्य परमार्थ की अनुभूति प्राप्त हो सकती है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि योगाभ्यास से मनुष्य भगवान की चिंतन पद तक पहुंचता है। जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है, ध्यानावस्थित तत्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। ध्यान में लीन मनुष्य योगाभ्यास से सिद्धि प्राप्त कर सकता है, तब उसे भगवान के दर्शन होते हैं। मनुष्य अनेक प्रकार के अभ्यासों से इंद्रियों को वश में कर सकता है, किंतु इंद्रियों को वश में करने से ही कोई सार को प्राप्त नहीं होता, किंतु गुरु तथा भगवान में एकांत श्रद्धा होने से मनुष्य न केवल इंद्रियों को वश में कर सकता है अपितु भगवान के दर्शन भी कर सकता है। यस्या देवे परा भक्तिरिता देवतता गुरो तस्याय कतियायते हि अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। जो लोग भगवान तथा गुरु दोनों पर निर्विवाद श्रद्धा रखते हैं उन्हें महात्माओं को वैदिक ज्ञान का अवश्य स्वतः प्रकट होता है, श्वेताश्वर उपनिषद। आगे भी कहा गया है, तुष्येयम् सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया तथा तत्व तथा तरंत्याज्ञो भवार्णवम्। गुरु की सेवा करने करके ही अज्ञान के सागर को पार करके भगवद्धाम को लौट जा सकता है। तब उसे क्रमशः भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं और वह भगवान की संगति में जीवन का होर जीवन का भोग कर सकता है। भोग का चरम लक्ष्य भगवान के संपर्क में आना है। जब तक इसकी प्राप्ति न हो तब तक तथाकथित योगाभ्यास व्यर्थ का श्रम है।
ओम ज्ञात विरांदस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंध दीनबंधव जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
अभी नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज के प्रसंग में, संवाद के प्रसंग में, नारद मुनि एक सभ्य व्यक्ति को किस प्रकार जीना चाहिए उसके बारे में वर्णन करते हुए अनेक उपदेश देते हुए ये जो प्रसंग में चल रहा है कुछ श्लोकों में, तीन चार श्लोकों में ये उपदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार भले ही कितने प्रकार की भी आप धार्मिक कार्य करो, सभ्य व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि वो गुरु का शरण ग्रहण करता है। श्रील प्रभुपाद जी इस बात को एक बार कन्वर्सेशन में इस बात को कहते हैं कि मेरे बचपन में कलकत्ता में जितने भी लोग थे सबका कोई ना कोई गुरु रहता था, कोई ना कोई, चाहे मायावादी हो चाहे कुछ ना हो, कोई ना कोई गुरु रहता था। यानी गुरु का शरण ग्रहण करना एक सभ्य समाज का एक स्वभाव है। वैसे तो एक प्रमाणिक गुरु का शरण ग्रहण करना चाहिए, लेकिन बात इधर हो रहा है कि गुरु का शरण ग्रहण करना चाहिए। अज्ञान का अभाव की वजह से, अज्ञान की वजह से वो किसी को भी गुरु मान के बैठ जाते हैं, लेकिन सच में उनके मन में तो भाव ये है कि गुरु तो होना चाहिए जीवन में। अभी भी ऐसी सभ्यता है कि कुछ लोग इस प्रकार कहते हैं, जब एक सभ्य लोगों से जब मिलना होता है वो कहते हैं कि अगर गुरु हम लोग नहीं करेंगे तो हमारा जीवन बेकार है। वैसे इस भारत की संस्कृति में लोगों के खून में इस प्रकार की भाव है कि हमको एक गुरु स्वीकार करना है, उनका शरण ग्रहण करना है। तो ये सभ्य व्यक्ति का ये स्वभाव होता है, एक लक्षण होता है। क्या ज्ञान का अभाव की वजह से गुरु कौन है, कैसे शरण लेना चाहिए और किसके लिए लेना चाहिए, वो सब चीजें नहीं रहता है, ज्ञान नहीं रहता है। लेकिन इतना मालूम है लेना चाहिए,
तो पिछले कुछ श्लोकों में गुरु के विषय में चर्चा हो रही है, आज के श्लोक में ये बात चर्चा हो रही है। क्या हो रही है? अगर कोई व्यक्ति कहता है, वैसे शास्त्रों में बहुत सारे नियम कानून बताए गए हैं कि आपको तपस्या करना है, आपको इस प्रकार का जप करना है, इस प्रकार के यज्ञ करना है, जब बताया गया शास्त्रों में, तो गुरु की क्या आवश्यकता है? व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ ए स्पिरिचुअल मास्टर? तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को खंडन किया हुआ इस श्लोक में, कि कैसे खंडन किया हुआ है। अगर भले ही आप सारे प्रकार की शास्त्रिक नियम पालन करोगे, खास करके जो षड वर्ग समय एकांता जो पहला श्लोक में है, पहला लाइन में है, षड वर्ग संयम एकांता, जो षड वर्ग का अर्थ है कि इंद्रियां, अपनी कर्मेंद्रिया, अपनी ज्ञानेंद्रिया और मन को संयम रखने के लिए, यानी कंट्रोल में रखने के लिए अनेकों नियम कानून को पालन करेंगे। अगर मान लीजिए, अगर हमने संयम में रख लिया, रखने के बाद भी क्या शब्द है ना, चोदनात् ऐसा लिखा हुआ है कि षड वर्ग संयोगात सर्व नियम चोदनात्, सारे नियम कानून को भी पालन कर रहे हैं, लेकिन ये करने के बाद ही तदंतः यदि नौ योगम नौ योगान, तदंतः यदि ये सब करने के बाद भी ना योगान, ना योगान का अर्थ है अगर भगवान के, भगवान की प्राप्ति नहीं होती है तो क्या है, आवह हे युहु श्रमावहाः, ये पूरा श्रम के बराबर है, केवल श्रम मात्र ही है। तो अगर कोई व्यक्ति ये प्रश्न पूछता है, मैं गुरु के बिना मैं अपनी इंद्रियों को दमन कर सकता हूं, कर भी लिया है और शांति को प्राप्त कर लिया है, तो सारे नियम को पालन किया है, तो ये सब चीजें केवल श्रम मात्र है, इस बात को कहा गया है। क्यों? क्योंकि आप गुरु के बिना या गुरु की शरणागति के प्राप्त के बिना अनेकों विधियों को पालन करके इंद्रियों को दमन कर सकते हो, लेकिन भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। योगान, ये योगान का अर्थ है भगवान की प्राप्ति है, भगवान के प्रति ध्यान, ये प्राप्त नहीं होगा, ये बात इधर कहा गया है। तो इधर देखते हैं कि सबसे पहला षड वर्ग संयम एकांता, षड वर्ग संयम एकांता, इसका अर्थ है इंद्रियन दमन करने का चरम लक्ष्य को रखते हुए इंद्रियों को दमन करने के जितने भी नियम कानून है वो पालन करना। ये जितने भी बहुत सारे शास्त्र में इस प्रकार के नियम कानून है, तो ये नियम कानून डायरेक्टली शास्त्रों से पढ़ते हुए अगर हम लोग पालन करेंगे तो निश्चित रूप से इंद्रियों को दमन कर सकते हैं। जैसे शास्त्र में लिखा हुआ है, अगर आप उपवास करोगे तो आपके इंद्रिया नियंत्रण में आ जाएंगे। तो लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होगी केवल तपस्या उस प्रकार करने के द्वारा। जैसे अगर कोई बच्चा कहता है, ओ मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं टीचर से पढ़ाई नहीं करूंगा, क्यों, टेक्स्ट बुक है ना, उसको पढ़ के मैं एग्जाम दे दूंगा। हो सकता है वो टेक्स्ट बुक पढ़ के एग्जाम दे दे और एग्जाम में पास भी हो जाए, लेकिन निश्चित रूप में ऐसी कुछ बातें हैं उसको समझ में नहीं आएगा। अभी का एग्जाम पास कर लेगा, बाद का एग्जाम ही पास कर लेगा, रट्टा मार के सना समझे ना समझे, लेकिन जब उसको एंट्रेंस एग्जाम की बात आती है, जहां उनको हर चीज समझ के उसको व्यवहारिक रूप में लागू करना पड़ता है, उसमें वो फेल हो जाएगा। तो अगर टीचर की आवश्यकता ना हो तो इवन भौतिक शिक्षा के लिए भी, तो ये जो स्कूल कॉलेज की क्या आवश्यकता है, गवर्नमेंट जो है वो केवल पुस्तकों को वो छाप के सबको वितरण करके एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं, आप पुस्तक पढ़ के आइए एग्जाम दीजिए, ऐसा तो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि भले ही वो पुस्तक पढ़ के एग्जाम पास भी कर ले, लेकिन उसका ज्ञान समझ में नहीं आएगा। जब भौतिक ज्ञान समझ में नहीं आए तो आध्यात्मिक ज्ञान की क्या कहना। हमको प्रत्येक शिक्षा के लिए, भौतिक शिक्षा के लिए भी एक गुरु की आवश्यकता है। गुरु के बिना हम कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो गुरु के अनुमति के बिना या उनको शरणागत हुए बिना ज्ञान को प्राप्त करने की जो स्वभाव है, ये स्वभाव जो है वो एकलव्य का स्वभाव है। भले ही सारा जगत एकलव्य को स्तुति करता है, क्या स्तुति करता है, बड़ा गुरु भक्त के रूप में स्तुति करता है, लेकिन वैष्णव आचार्य कहते हैं ये सबसे बड़ा गुरु द्रोही था। आप सबको मालूम है एकलव्य वो द्रोणाचार्य के पास गया था, जाके उन्होंने कहा कि मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूं। द्रोणाचार्य ने कहा कि नहीं, मैं केवल क्षत्रियों को सिखाऊंगा, आप जाओ, आपको मैं शिक्षा नहीं दूंगा। तो एकलव्य ने सोचा, ऐसा कहता है द्रोणाचार्य, मैं उनको सीख के रहूंगा, शास्त्रों को सीख के रहूंगा, धनुर्विद्या को सीखूंगा, लेकिन कहां से सीखूंगा, द्रोणाचार्य से ही सीखूंगा। तो द्रोणाचार्य का विग्रह को उन्होंने बनाया, उनको प्राण प्रतिष्ठा किया और उनके सामने रोज आके उन्होंने अपने आप से अध्ययन किया। इतना हद तक अध्ययन किया, एक दिन द्रोणाचार्य अर्जुन जा रहे थे तो क्या हुआ, वो अचानक एक कुत्ता उधर भौंक रहा था, पता नहीं कहां से 7 बाण आए और उस कुत्ते को मुंह बंद कर दिए। तो अर्जुन ने इस प्रकार की धनुर्विद्या को देख के चकित हो गया। तो द्रोणाचार्य को कहा उन्होंने कि आपने कहा कि मेरे से बढ़कर कोई धनुर्योद्धा नहीं रहेगा, तो ये जो विद्या है मुझे नहीं मालूम। तो द्रोणाचार्य समझ गए कि ये जो विद्या है, भले ही उसके पास धनुर्विद्या बहुत है, लेकिन फिर भी ये दुष्ट है, उसको मालूम नहीं इतना महान धनुर्विद्या को एक कुत्ते की भोक को बंद करने के लिए इस्तेमाल किया। निश्चित रूप में ये जो है निम्न बुद्धि का है, भले ही उसके पास भौतिक बुद्धि है लेकिन उसको प्रयोग करने का बुद्धि नहीं है। कौन है, जाके देखा उन्होंने, जाके तुरंत उन्होंने देखा कि एकलव्य है, और एकलव्य क्या कर रहा है, वो प्रैक्टिस कर रहा है, वो साधना कर रहा है धनुर्विद्या का। किसको सामने रख के, द्रोणाचार्य का विग्रह को सामने रख के। द्रोणाचार्य को अंदर ही अंदर बहुत दुख लगा और गुस्सा भी आया, तो उन्होंने क्या किया, एकलव्य को बुलाया। एकलव्य द्रोणाचार्य को देख के आगे प्रणाम भी किया, और वो प्रणाम कैसे किया, हंसते हंसते प्रणाम किया, मुस्कुराते हुए प्रणाम किया, यानी एक व्यंग्य रूप में, आपने नहीं सीखा है ना, देखो मैंने सीखा है, वो आपसे ही सीखा है। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि बहुत अच्छा तुमने सीखा है, ये सब तुम मुझसे ही सीखा है ना, क्योंकि मेरा विग्रह को रख के प्राण प्रतिष्ठा जैसे करके तुमने सीखा है, तो गुरु दक्षिणा दो। तो एकलव्य ने कहा कि क्या गुरु दक्षिणा चाहिए बताइए। तो द्रोणाचार्य ने कहा मुझे क्या चाहिए, तुम्हारे राइट हैंड का अंगूठा दो। तो एकलव्य जो है वो समझ गया, क्योंकि उनको इतना ज्ञान था, अगर गुरु दक्षिणा नहीं दूंगा तो मेरा ज्ञान का कोई फायदा नहीं, और दूसरी बात है अगर मैं ये जो अंगूठा काट के दे दूंगा, आज से मैं बाण नहीं चला पाऊंगा। तब एकलव्य को मालूम पड़ा कि द्रोणाचार्य ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने अंगूठा काट के दे दिया। लेकिन अंगूठा जब काटा, उस समय भी उसके पास अहंकार था, क्या अहंकार था, आपने मना किया ना, लेकिन फिर भी मैं सीखा, देखो। तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य को मना क्यों किया था, क्योंकि उनके पास योग्यता नहीं थी, सीखने की योग्यता नहीं, उसका प्रयोग करने की योग्यता नहीं थी। तो आजकल की जो शिक्षा है वो सब लोगों को दिया जा रहा है, सबको डॉक्टर बनाया जा रहा है, इंजीनियर बनाया जा रहा है, लेकिन यही देखते हैं कि उसके पास वो डॉक्टरी सीखने की योग्यता है कि नहीं, वो इंजीनियरिंग को सीखने की योग्यता नहीं है कि नहीं, वही देखा जाता है, लेकिन उसका प्रयोग वो बराबर कर सकता है कि नहीं, वो योग्यता नहीं देखा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, वो गणित आता है उसको, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, एंट्रेंस एग्जाम में उसको बहुत अच्छा नंबर मिला, उसको IIT में दाखिला दिया, क्योंकि आप अच्छा फिजिक्स जानते हो, अच्छा इंजीनियर हो, लेकिन ये कोई एग्जाम नहीं है जहां उधर ये देखा जाता है कि वो अच्छा व्यक्ति है कि नहीं। अगर आप एक दुष्ट व्यक्ति को अगर आप शिक्षा दोगे तो क्या करेगा, वही शिक्षा को क्या करेगा, वो दुरुपयोग करेगा। मान लो कि कोई दुष्ट व्यक्ति है लेकिन उसके पास बहुत बुद्धि है, उसको आपने IIT में ले लिया, उसको सारा ज्ञान सिखा दिया इंजीनियरिंग का, वही व्यक्ति क्या करेगा, एक आटम बॉम्ब बनाएगा और वो दुरुपयोग करेगा, आतंकवादी बनेगा। जैसे आप एक जगह कोई आतंकवादी का संस्था है, उधर उनके पास ऐसा फैक्ट्री है जिसमें बम बनाया जाता है और बड़े बड़े तोप बनाए जाते हैं, बंदूक बनाए जाते हैं, जो आजकल के जो आधुनिक जो बड़े बड़े इंडस्ट्री में बनता है बंदूक वगैरह, उससे अच्छा बंदूक वो लोग बनाते हैं। और उधर कौन है जो बनाने वाले, वो सब इंजीनियर लोग हैं, बड़े बड़े शिक्षाओं को ग्रहण करके आए अलग अलग विश्वविद्यालयों में दुनिया भर के। तो ये देखिए, तो एग्जाम होता है, परीक्षा होता है, किसके होते हैं, उसके पास सीखने की योग्यता है कि नहीं उसका परीक्षा होता है। लेकिन वो सीखा हुआ विद्या को बराबर प्रयोग कर सकता है कि नहीं, ये अच्छा व्यक्ति है कि नहीं, उसका एग्जाम कहाँ है, उसका कोई एग्जाम नहीं है। इसलिए ये जगत जो है और कलयुग आगे बढ़ता जा रहा है और बहुत अनेक उत्पात होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि गुरु का शरणागति ये सारे सद्गुणों का स्रोत है। क्योंकि शरण गुरु का शरणागति के बिना किसी के पास कोई सद्गुण नहीं हो सकता है। भले ही वो अपनी भौतिक बुद्धि के द्वारा विद्या प्राप्त कर सकता है, इतना हद तक कि जो दुष्कर चीजें इंद्रियों को दमन करना वो भी कर सकता है, जैसे श्लोक में कहा गया है इंद्रियों को दमन करना बहुत दुष्कर है, लेकिन गुरु के बिना वो इंद्रियों को दमन कर भी सकता है। इंद्रियों को दमन करना इतना मुश्किल है कि उससे बढ़कर कोई चीज नहीं है इस भौतिक जगत में। तो अगर इंद्रियों को दमन करने की शक्ति प्राप्त होता है, बाकी सब चीजों के क्या कहना, गुरु के बिना सब प्राप्त कर सकते हो, लेकिन एक चीज प्राप्त नहीं होता, वो क्या है, वो भक्ति प्राप्त नहीं होता है, भगवान प्राप्त नहीं होते। तो भक्ति और भगवान को प्राप्त करने के लिए हमको गुरु का शरण ग्रहण करना चाहिए, बाकी सब चीजें उनके बिना प्राप्त हो सकता है। इसलिए सारे आचार्य अपने टीकाओं में इसी बात को कहते हैं कि किंचित कामादिनाम गुरु भक्ति साध्येत सयेव। अगर तो व्यक्ति प्रश्न पूछता है, दूसरा प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या प्रश्न उत्पन्न होता है, ये जो हमने कामनाओं को दमन करना, इंद्रियों को दमन करना और शास्त्रों में अनेकों नियम जो वर्णन किया गया है, तो फिर वो क्यों किया गया है। तो अगर ये कहा जाए कि बस आप गुरु भक्ति करो और ये इतना ही काफी है, कह के शास्त्र बंद कर सकते हैं, गुरु भक्ति के बारे में वर्णन कर सकते हैं, या अनेकों तपस्या अनेकों अनेक प्रकार के नियमों के बारे में क्यों वर्णन किया गया है, तो इधर श्री आचार्य लिखते हैं कि ये जितने भी कार्यकलाप है, किंचित या कामादिनाम जयेत गुरु भक्ति साध्येत सयेव। तो ये जाप जितने भी शास्त्र में नियम कानून वर्णन किया गया है, वो सारे नियम कानून के पीछे एकमात्र उद्देश्य है, क्या है, वो गुरु भक्ति साध्येत, गुरु भक्ति को प्राप्त करने के लिए ये सब है। और वो गुरु भक्ति प्राप्त करने के बाद वो गुरु भक्ति के द्वारा कृष्ण भक्ति प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति जितने भी ये षड वर्गीकम संयोग कामान ये जितने भी नियम कानून है शास्त्रों के, ये सब पालन कर रहा है, लेकिन ये सारे शास्त्रिक नियमों को पालन करने के मूल उद्देश्य गुरु भक्ति है, ये बात को नहीं जानता है, वो सोचता है कि गुरु के बिना मैं ये सब कर रहा हूं तो मुझे क्या जरूरत है गुरु की। तो वो इस प्रकार की जो कार्य है वो श्रम एव ही केवलम, आखिरी में क्या कहा गया, केवल श्रम मात्र है। इसलिए भागवत में भी पहला स्कंद में भी यही श्लोक आता है, धर्म सुनिष्ठ पुंसान विश्वक्षेण कथासु यह न उत्पादयेत यदिरतम श्रम एव ही केवलम। तो उस बात को भी मिलाते हुए इधर आचार्यगण कहते हैं केवल तपस्या ही नहीं, वर्णाश्रम धर्म का भी पालन करना। अगर कोई वर्णाश्रम धर्म का ही पालन करता है लेकिन वो उसके पास गुरु भक्ति नहीं है, तो गुरु भक्ति के बिना वर्णाश्रम धर्म का अच्छी तरह से क्यों ना पालन करे, और सारे तपस्या जितने भी शास्त्रीय नियम को अच्छी तरह से क्यों ना पालन करे, वो केवल श्रम मात्र है। जिस प्रकार आप भक्ति के सारे नियम पालन करने के बाद भी अगर कृष्ण कथा के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं होता है, धर्म संतिष्ठ पुंसान विश्वक्षेण कथा से न उत्पादयेत यदिरतिम, रति नहीं है भगवान के भक्ति के प्रति, भगवान की कथा के प्रति, जिस प्रकार ये तथाकथित साधना भी व्यर्थ है, साधना भी श्रम है, ऐसा है तो ये तथाकथित जो तपस्या है वो सब चीज की क्या कहना अगर वो गुरु भक्ति को उत्पन्न नहीं करता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी एक श्लोक कोट करते हैं, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। सारे योगियों का एकमात्र लक्ष्य क्या है, अपने ध्यान में कृष्ण का दर्शन करना। संत सदैव हृदयेश विलोकयंती, ये तभी होगा जब हमारे अंदर गुरु भक्ति होगा। तो ये गुरु भक्ति की क्या आवश्यकता है भगवान की, भगवान को प्राप्त करने के लिए, उसके बारे में एक आचार्य उल्लेखन करते हैं। क्योंकि कृष्ण जो है वो शुद्ध भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। स्वांतस्तेन गदाव्रतः तीर्ति स्वयं तीर्थ विभो भवता, श्लोक कौन सा है, भवद्विदा भागवता तीर्ति तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, वो श्लोक में स्वांतस्तेन गदाव्रतः, स्वांतस्तेन ऐसे जो महान भक्त है जो मूर्तिमान तीर्थ स्थान है वो जहां जाते हैं वो तीर्थ हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्वांतस्तेन वैसे महान भक्तों के हृदय में भगवान निवास करते हैं। तो ये भगवान अगर भक्तों के हृदय में निवास करते हैं तो भगवान को कैसे दर्शन करना चाहिए, गुरु के हृदय में दर्शन करना चाहिए। उसके विषय में एक छोटा सा प्रसंग मैंने एक चर्चा किया था एक हमारे इस्कान के एक आचार्य से। तो मैंने उनको एक प्रश्न पूछा कि सुबह सुबह हम मंगल आरती के समय गुरु अष्टकम को गाते हैं, ऐसा क्यों गाते हैं? गुरु अष्टकम जो है वो तो कभी और भी गाया जा सकता है। सुबह सुबह मंगल आरती में आप गौड़िया मठ में या अन्य जगह जाइए तो उधर जो है राधा कृष्ण का स्मरण किया जाता है, राधा कृष्ण गीत को गाया जाता है। प्रभुपाद जी ने ऐसा क्यों किया कि उन्होंने गुरु अष्टकम को दिया? पहला कारण यह है कि श्रील प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय भजन था ये संसार दावा, और उनका सिद्ध प्रणाली भजन था ये संसार दावा। जिस प्रकार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए श्री गुरु चरण पद्म ये उनके लिए सिद्ध प्रणाली भजन था, तो उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी के ये है। और खास करके हमारे संस्था के लिए प्रभुपाद जी ने ये गुरु अष्टकम को क्यों दिया है, इसके पीछे उन्होंने रहस्य बताया कि खास करके हमारी संस्था में जो जुड़े हुए जो भक्त होते हैं वो एकदम नव दीक्षित है। वैसे भौतिक जगत में नाना प्रकार के गंदे कार्य करके पता नहीं एक भक्त का संगति प्राप्त हुआ तो वो आ गए संस्था में जुड़े, तो वैसे जो चित्त चेतना से आए हैं तो उनको सीधा राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण नहीं हो सकता सुबह, क्योंकि बहुत सारे तमस और रजस की भावना बहुत है। तो वैसे लोगों को अगर राधा कृष्ण का स्मरण कैसे हो पाएगा? वो तभी हो पाएगा जब वो गुरु के हृदय में राधा कृष्ण को देखते हैं। राधा कृष्ण का दर्शन सुबह हम कैसे करते हैं? गुरु के हृदय में करते हैं। गुरु के हृदय में करना का अर्थ क्या है? किस प्रकार मेरे गुरु जो है निकुंज योनो रतिकेली सिद्धे याया लेभेर युक्ति अभिक्षणीया, किस प्रकार मेरे गुरु राधा कृष्ण का सेवा कर रहे हैं, ये स्मरण करने के द्वारा राधा कृष्ण का स्मरण होता है। तो कभी भी आप गुरु को और भगवान को अलग देख नहीं सकते हो। ये अलग देखना इन दोनों को ये मायावाद कहा जाता है। खास करके एक ऐसी संस्था है गुजरात में, वो वैसे उनसे जुड़े हुए लोग जब हमारे कार्यक्रम में आते हैं वो पूरा प्रवचन सुनने के बाद हमसे एक प्रश्न पूछते हैं, महाराज ये बताइए गुरु बड़ा है भगवान बड़े हैं? क्योंकि वो भगवान को कोने में डाल देंगे और गुरु को पूजा करते हैं, उनका वो सिद्धांत है। इसलिए हमको थोड़ा सा बुद्धिमता से प्रश्न पूछते हैं, ये बताइए महाराज कि गुरु बड़े हैं भगवान बड़े हैं? तो स्वाभाविक तरीके से हम जवाब देंगे गुरु बड़े हैं, थोड़ा खुश हो जाते हैं, हाँ इसलिए महाराज हम तो गुरु का पूजा करते हैं। तो मैंने कहा गुरु का पूजा का अर्थ क्या है? गुरु का पूजा का अर्थ है वो जो कहता है वो करना। और गुरु ने क्या कहा? कृष्ण का पूजा करो। तो गुरु का पूजा का अर्थ क्या है? उनके आदेशों को पालन करना। उनका आदेश है कृष्ण का पूजा करो, इसलिए कृष्ण का पूजा करते हैं, अस्तित्व में हम गुरु का ही पूजा कर रहे हैं। तो नहीं, हमारे हम तो खाली गुरु का पूजा करते हैं। तो मैंने कहा कि आपके गुरु ने गुरु जो है गुरु है ही नहीं, क्योंकि गुरु वो है जो क्या कहता है, आप कृष्ण का पूजा करो, आप कृष्ण को जो दर्शन दिलाता है वो गुरु है। तो ये वास्तविक सिद्धांत है, इसको दोनों को अलग करना। वो अपने आप को वैष्णव भी कहते हैं लेकिन अस्तित्व में मायावादी। क्यों मायावादी है? क्योंकि गुरु और भगवान को अलग करके देखते हैं। उनको अलग करना ये बड़ा घोर अपराध है।
गुरु को अलग देखना, ये भगवान के कोई संबंध नहीं है, और भगवान को देखना, अरे भगवान तो प्राप्त हो जाएंगे, गुरु को कोई जरूरत नहीं है, ये दोनों प्रकार की भावना जो है ये मायावाद कहलाता है। तो इसलिए ये प्रसंग में अति महत्वपूर्ण बात इससे कहा गया है कि जितने भी शास्त्रिक नियम कानून है वो सारे चीजों का उद्देश्य ये है कि हम कृष्ण को ध्यान करें, और कृष्ण का ध्यान तभी होगा जब गुरु के ऊपर ध्यान होगा, कृष्ण भक्ति तभी होगा जब गुरु भक्ति होगा, गुरु भक्ति के बिना कृष्ण भक्ति हो ही नहीं सकता है, ये इसका निष्कर्ष है। तो आगे और एक आचार्य इस बात को कहते हैं कि ये श्लोक में इस बात की पुष्टि किया गया है। क्या पुष्टि किया गया है कि गुरु भक्ति के बिना जितने भी अन्य साधन हैं वो सारे साधन, वो साधरे सारे साधनों के द्वारा सोचते हैं कि भगवान की प्राप्ति होगी, वो नहीं हो पाएगा, वो करते जाएगा लेकिन अंततः केवल उनको उनको क्या होगा, उनको केवल दुख ही प्राप्त होगा, केवल श्रम मात्र ही प्राप्त होगा। इसलिए सारे भक्तों को ये बात को ध्यान में रखना चाहिए कि किस प्रकार हम गुरु भक्ति को बढ़ाए। तो गुरु के द्वारा दिए गए आदेश उसको पालन करने के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्र के द्वारा दिया गया जो आदेश है उसको पालन करने जाएंगे अपनी मनमानी तो वो इस प्रकार है, जिस प्रकार है कि आप को थोड़ा सा ज्ञान है कि दवाइयों का ज्ञान है, तो घर में आपको बुखार आया, तो बुखार आते ही आपने क्या किया, चलो बुखार तो है, जाऊंगा दवाई की दुकान में, जाके बहुत सारे दवाइयां हैं, जो दवाई चाहिए ले लूंगा, बुखार की बहुत सारी दवाइयां हैं मैं ले लूंगा, डॉक्टर के जाने के पास क्या जरूरत है, क्रोसिन है वो है ये आने को, कुछ कुछ तो ज्ञान है क्योंकि पढ़ लिया है, इधर उधर से जान लिया है, तो जाके दवाई की दुकान में सीधा जाके दवाई लिया, दवाई ले लिया तो बुखार और बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि उसको मालूम नहीं था किसके लिए बुखार है। दूसरी बात, अगर वो सही दवाई भी लिया, उनको ऐसा लगा मेरा मलेरिया है, उनको टेस्ट भी करा लिया अपने आप से, उसको मालूम पड़ा मलेरिया है, तो दुकान में जाकर मलेरिया का मेडिसिन दो, उसने ले लिया मलेरिया का मेडिसिन, लेकिन वो लेने के बाद उसको और अनेकों प्रकार के शरीर में पूरे फोड़े हो गए। क्यों? क्योंकि वो जो दवाई है वो एसिडिटी उत्पन्न करता है, तो वो डॉक्टर को मालूम है इसके लिए एलर्जी है, इसके लिए और एक दवाई देना पड़ता है। तो अपने मनमानी शास्त्रिक नियम भी पालन करेंगे, भले ही शास्त्रिक बातें हैं, अगर कोई व्यक्ति मनमानी करता है उसका विपरीत फल होता है। ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के लिए ऐसा लगे कि ये जो नियम है, ये जो परिणाम है, इंद्रिया दमन हो रहे, सब कुछ हो रहे, लेकिन कृष्ण को प्राप्त करना है तो वो तभी संभव है जब ये गुरु का शरण ग्रहण करेंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी भागवतम के और श्वेताश्वर उपनिषद के दो श्लोकों को प्रकोट करते हैं, यस्या देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरो, यथा देवे तथा गुरो, ये शब्द के द्वारा सूचित किया जा रहा है कि देव और यानी भगवान और गुरु में कोई अंतर नहीं है, तो आप इन दोनों को अलग करने के लिए प्रयास मत करो, जितना भक्ति गुरु भक्ति है उतना भगवत भक्ति प्राप्त होगा। हमारी जो भगवत भक्ति है वो गुरु भक्ति के ऊपर आधारित है। तो आगे कहा गया है श्रीमद् भागवतम में कि ये भागवत का वर्णन है कि तुष्येयम् सर्वभूतात्मा गुरुर् शुश्रूषया तथा तरन्त्याज्ञो भवार्णवम्। अगर कोई व्यक्ति शुश्रूषया गुरुः, गुरु का सेवा करता है, तो क्या होगा, उनको अज्ञान का जो सागर है उससे वो तार कर सकता है, ये कैन क्रॉस ओवर इट। इसलिए इस श्लोक में गुरु भक्ति का वर्णन हुआ है, भले ही योगान ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये जो पिछले श्लोक में स एष भगवान इसके बारे में आचार्य कहते हैं, स एष भगवान नारद मुनि कहते हैं, स एष भगवान करके अलग जगह भी अन्य जगह भी नारद मुनि युधिष्ठिर को कहते हैं कि ये राजसूय सभा में ये चर्चा हो रहा है, चर्चा करते हुए ये स एष भगवान भाई कृष्ण राजसूय यज्ञ में उन्होंने क्या सेवा स्वीकार किया था, उन्होंने जूता का सेवा स्वीकार किया था। युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि दिखाते हुए यही कृष्ण है जो भगवान है। और आगे स एष भगवान सा ये जो शब्द है येषा वै भगवान साक्षात, येषा वै भगवान साक्षात, इसका एक आचार्य वर्णन करते हैं कि जिनको मैंने गुरु के रूप में बताया पिछले श्लोक में, गुरु करके जिनको शरण लेना चाहिए करके कहा है, वो कोई और नहीं है साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान है। तो उनका ही प्रसंग चल रहा है, भले ही इस श्लोक में गुरु का शब्द नहीं आया है, इधर प्रसंग के अनुसार इसको समझना चाहिए। वैसे देखेंगे अनुवाद में कहा गया है कि जितने भी हमारे नियम कानून जितने पालन करते हैं शास्त्रिक, भगवान के ध्यान नहीं होता है तो इसका कोई व्यर्थ कोई फायदा नहीं है। यानी सारे शास्त्रिक नियमों को पालन करने का उद्देश्य है भगवान का ध्यान होना, तो इस बात को कहा गया है ये श्लोक में। लेकिन प्रसंग के अनुसार लेंगे तो गुरु भक्ति को स्थापना करने के लिए ये श्लोक को उच्चारण किया गया है। खास करके श्री विश्वनाथ ठाकुर इस रूप में स्पष्ट रूप में कहते हैं कि शास्त्रिक नियम कानून को पालन करने का मूल उद्देश्य है गुरु भक्ति को उत्पन्न करना, जिसके द्वारा कृष्ण भक्ति हमारे हृदय में प्रकट होता है। तो इधर हम समाप्त करेंगे, कोई प्रश्न वगैरह तो पूछिएगा। हाँ, मायावादी लोग क्या कहते हैं, वो भी गुरु भक्ति दिखाते हैं। किसके लिए? व्रजवासियों को और मायापुर वासियों को गुरु की आवश्यकता नहीं है। हाँ, व्रजवासी और मायापुर वासी वो रागात्मिका के स्तर में है, रागात्मिका भक्त, रागानुगा और रागात्मिका, ये दोनों में अंतर है। रागानुगा भक्त को भी गुरु की आवश्यकता होता है, रागानुगा गुरु वो मार्गदर्शन देंगे, लेकिन जो रागात्मिका के स्तर में है, जिनका जन्मतः कृष्ण के प्रति अनुराग है, उनके लिए स्वयं भगवान ही गुरु है। क्योंकि उनके हृदय में जो परमात्मा है वो उनके साथ सीधा संपर्क रहता है, तो इसके लिए उनको स्वयं भगवान परमात्मा के रूप में वो गुरु का कार्य करते हैं। इसलिए कोई विशेष तरीके से कोई उनको गुरु को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो करते हैं। जैसे भगवद गीता के तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं यस्यात्मरतिरेव स्यात् यस्यात्मतृप्तस्य मानः यस्यात्मसंतुष्टस्य तस्य कार्यं न विद्यते। कर्मयोग के बारे में वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कर्म करना चाहिए, भगवान को यज्ञार्थात कर्मोन्यत्र करो। करते करते ये श्लोक में भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहते हैं कि जो आत्मरतिरेव अपनी आत्मा में रमण करता है, आत्मसंतुष्टस्य अपने आप में संतुष्ट है, उनको कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, पूर्ण तरीके से वो निर्भर करता है भगवान के ऊपर, वैसे व्यक्ति को तस्य कार्यम न विद्यते, उनका कोई कर्तव्य नहीं है। तुरंत 18वें अध्याय में 18वें श्लोक में कहते हैं कि जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया है उसको कर्म करने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि वो करता नहीं है। जैसे जनक महाराज, जनक महाराज आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किए थे लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सारे कर्तव्यों को निभाया, और बाद में स्वयं कृष्ण अपना वही उदाहरण देते हैं, नमाम कर्माणि लिम्बन्ति, मैं अपने कर्म से बंधन में परे हूं लेकिन फिर भी जब मैं प्रकट होता हूं मैं क्या करता हूं, मैं सारे। इसी प्रकार व्रजवासी और मायापुरवासी, खास करके जो रागात्मिका के स्तर में है, उनको कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा ही उनका गुरु है। अस्तित्व में हमारे लिए भी परमात्मा ही गुरु है लेकिन उनका आवाज सुन नहीं पाते हैं, उनका आवाज हमारे गुरु हमको सुनाते हैं। जैसे गुरु परमात्मा हमारे गुरु है, वो चिल्ला रहे उठो वो करो ये करो ऐसा मत करो, लेकिन हम सुन नहीं रहे। तो सुनाने के लिए वही परमात्मा बाहर एक गुरु के रूप में प्रकट होकर कहते हैं, लेकिन रागात्मिका के स्तर में हम गुणों से परे हैं, तो गुणों का आवरण नहीं होने की वजह से उनके हृदय के जो परमात्मा का जो आवाज है वो डायरेक्ट उनके साथ संपर्क। संत सदैव हृदयेश विलोकयंती, वो स्तर में कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक शास्त्र प्रमाण के अनुसार वो स्वीकार करते हैं, फिर भी स्वीकार करते हैं, दे एक्सेप्ट, क्योंकि लोक संग्रह में वापि संसिद्धि जनकादेहा, लोग सोचते हैं अगर ये नहीं किया तो मैं भी करूंगा, योग्यता के बिना वो भी गुरु को स्वीकार ना करें, जैसे योग्यता के बिना लोग संन्यास देने लग जाएंगे। तो इसलिए भगवान ने कहा भले ही तुम संन्यास के योग्य हो फिर भी अपना जो कर्तव्य है वो करो, ताकि लोग जो हैं अयोग्यता होते हुए भी संन्यास ना स्वीकार करें। उसी प्रकार योग्यता होने पर भी वो गुरु को स्वीकार करते हैं, क्यों? ताकि अन्य लोग जो है वो उसको एक प्रमाण, एक 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 प्रमाण होना चाहिए, एक आदर्श होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। क्या हुआ? हाँ, अच्छा प्रश्न है। तो हमको गुरु कैसे प्राप्त होते हैं? भगवान की कृपा से गुरु प्राप्त होते, गुरु कृपा से भगवान प्राप्त होते, ये फॉर्मूला है। भगवान की कृपा से गुरु प्राप्त होते, भगवान उस जीव के ऊपर कृपा तभी करते हैं, या कृपा तो करने के कोई कारण नहीं होता, लेकिन साधारणतः जो उसके हृदय में क्या इच्छा है उसके ऊपर है। यो विदधाति कामान, जैसी कामनाएं हैं उस प्रकार के भगवान अरेंजमेंट करते हैं जीव को। अगर उस जीव के अंदर मैं कैसे इस भाव रोग से पीड़ा से मुक्त हो जाऊं, कैसे मैं भगवान को प्राप्त करूं, ऐसी इच्छा है, सिंसियरिटी है, तो भगवान जो है ऐसा गुरु को उनके पास भेजेंगे। अगर उस जीव के अंदर ऐसा इच्छा है कि मुझे जो है स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, भौतिक सुख चाहिए, तो भगवान जो है उनको ऐसे गुरु के पास भेज देंगे जो इस प्रकार की शिक्षा देता हो। तो एक शुद्ध वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए आचार्य को प्राप्त करना तभी संभव है जब उस जीव के अंदर इस प्रकार की सुकृति है, इस प्रकार की इच्छा है, तो भगवान जो ऐसे अलो कर देते हैं। लेकिन ये कलयुग में तो ऐसे लोगों के पास इस प्रकार कोई इच्छा ही नहीं रहता, तो भगवान विशेष तरीके से अनुकंपा करते हुए क्या करते हैं, तो ऐसे गुरु को प्रचार कार्य में लगाते हैं। पहले जमाने में क्या होता था, लोग गुरु के पास आते थे, लेकिन अभी चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में क्या है, गुरु लोगों के पास जाता है, तो इसका कोई कारण नहीं है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, जब किसान जो है वो खेती में बीज डालता है कि नहीं, तो वैसे ही गुरु कृष्ण भक्ति को ऐसा हर जगह फेंक रहे, सबको मौका मिल रहा है, ऐसा कौन है जिसको मौका नहीं है। पहले जमाने में ऐसा था, अभी भी कुछ ऐसे वैष्णव संप्रदाय है, जैसे मध्व संप्रदाय है, उधर आप गुरु के पास जाएंगे बोलेंगे मुझे स्वीकार कीजिए, वो बोलेंगे नहीं, आप अपना सत्कर्म करते जाओ, अगले जन्म में आप ब्राह्मण के परिवार में जन्म लो, वो भी मध्व परिवार में जन्म लो, तभी मैं आपको दीक्षा दूंगा। हाँ, ऐसा अभी तो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में क्या है, सब लोग आओ प्लीज कम, तो ये पूरा भगवान ने ऐसा योजना बनाया, सब आ सकते हैं, वो नहीं आ रहे तो उनका प्रॉब्लम है, मंदिर का दरवाजा सबके लिए खुला है। और ऐसा नहीं, हम ये नहीं कहते कि तुमको नहीं दूंगा दीक्षा, तुमको नहीं दूंगा, ऐसा नहीं कहते, नियम पालन करो, चाहे कोई भी हो, आपने कितना ही पाप किया हो आ सकते हैं। मौका भगवान ने इस्कॉन के द्वारा सबको दिया है, कंप्लेन नहीं कर सकता हमको गुरु प्राप्त नहीं हुए। एक बार एक प्रभुपाद जी एक प्रवचन कन्वर्सेशन हो रहा था, कलकत्ता से एक आए थे, ने कहा महाराज जी एक योग्य गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत गुस्से हो गए प्रभुपाद जी, और उनके सामने जाके बोलोगे एक योग्य गुरु, क्यों मैं गुरु हूं? वो कन्वर्सेशन एक बार सुन रहा था, हिंदी में है, एक्चुअली इंग्लिश कन्वर्सेशन था, लेकिन बीच में वो हिंदी का कन्वर्सेशन है, मैं गुरु हूं, योग्य शिष्य मिलना मुश्किल है। प्रॉब्लम जो है गुरु का नहीं, ऐसी शिकायत है। प्रभुपाद जी है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, शरणागत भी है और गुरु भक्ति नहीं है। नो, गुरु भक्ति का एक अंग है शरणागति, ऐसा नहीं हो सकता। शरणागत कौन? शरणागत थे नो, उनके हृदय में अहंकार की भावना था। हाँ हाँ, वो अहंकार से दिया उन्होंने। अच्छा, तुमसे सीखा है, लो, मांगा ना, लो, क्या चाहिए बोलो। अहंकार की भावना था उनके अंदर। जो अहंकार है वो केवल वैष्णव आचार्य उसको प्रस्तुत किए है, लेकिन सारा जगत सोचता है कि एकलव्य जैसा शिष्य बनना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा गुरुद्रोही है वो। अभी हम लोग जब बच्चों का प्रोग्राम का कॉम्पिटिशन लगाते हैं स्टोरी टेलिंग, तो एकलव्य का स्टोरी सब सुनाएंगे। लो, सारे जगत को सीखना चाहिए, ये गुरु भक्ति इससे सीखना चाहिए। लेकिन बक्सीनाथ ठाकुर ने स्पष्ट रूप में कहा है, उससे बढ़कर कोई गुरुद्रोही नहीं है, क्योंकि गुरु ने मना किया, तुम्हारे लिए यह शिक्षा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम कौन होते हो, मैं सीखूंगा। तुमने मना किया, जो मना किया उसी से सीखूंगा। चलो, यह अहंकार का हद है। ठीक है। ग्रंथराश्रमित भागवतम की श्रील प्रभुपाद की जय।